लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको प्रभु ईश्वर का आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि एशिया के लोग सुसमाचार का साक्ष्य देते हुए अन्य धर्मों के अनुयायियों के साथ वार्ता, शांति और परस्पर समझदारी को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। श्रोताओं, पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते हैं तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं एवं अड़चनों को जीवन से दूर रखें। मैं उसे अपना पहलौठा बनाऊंगा, पृथ्वी के राजाओं का अधिपति। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी, मेरी प्रतिज्ञा उसके लिए चिर स्थायी है। श्रोताओं, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 89वें भजन के 28वें और 29वें पदों के शब्द। इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। स्तोत्र ग्रंथ का 89वां भजन दाऊद के वंश पर आच्छादित गहन निराशा और हताशा के क्षण में रचा गया भजन है, जिसमें विपत्तियों का मारा ईश भक्त दुखी होने के बावजूद प्रभु ईश्वर की अनुपम शक्ति, उनका असीम प्रेम, उनकी अपार दया और सत्य प्रतिज्ञता को पहचानते हुए उनका स्तुतिगान करता है। प्रभु ईश्वर ने दाऊद को चुना, उसे पवित्र तेल से अभिषिक्त किया और अपने लोगों का राजा नियुक्त किया। उसी प्रकार जिस प्रकार ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु ख्रीस्त को इस धरा पर भेजा ताकि वे लोगों को पापों से मुक्ति दिलाएं और उनके लिए अनंत जीवन के द्वार खोल दें, ईश पुत्र मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त की भविष्यवाणी उनके आगमन से सदियों पूर्व नबियों ने कर दी थी। इसायास के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। 89वें भजन के आगे के पदों में भी भजनकार दाऊद पर ईश्वर की महती कृपा की चर्चा कर कहता है, मैं उसका वंश सदा बनाए रखूंगा, उसका सिंहासन आकाश की तरह चिर स्थायी होगा। और फिर दाऊद के लिए मेरा प्रेम चिर स्थायी है, मेरी प्रतिज्ञा सदा बनी रहेगी, मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं करूंगा, अपने मुख से निकला वचन नहीं बदलूंगा। और फिर 36 से लेकर 39 तक के पदों में मैंने सदा के लिए अपनी पवित्रता की शपथ खाई, मैं दाऊद के सामने मिथ्यावादी नहीं बनूंगा, उसके वंश का कभी अंत नहीं होगा, उसका सिंहासन मेरे सामने सूर्य की तरह बना रहेगा, आकाश में निष्ठावान साक्षी सदा बने रहने वाले चंद्रमा की तरह। श्रोताओ, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, नवासीवें भजन के इन शब्दों में भी मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त विषयक भविष्यवाणी निहित है। यहाँ भी ख्रीस्त और उनके राज्य के विषय की चर्चा है। इतिहास गवाह है, धरती के किसी भी राज्य का कभी न कभी अंत हो जाता है, कभी न कभी पतन हो जाता है, उसके महल खंडरों में परिणित हो जाते हैं, किंतु यीशु ख्रीस्त द्वारा प्रसारित ईश राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा। वह चिर स्थायी राज्य है। नबी ईसाया के ग्रंथ के 53वें अध्याय के 10वें पद में लिखा है, प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए, उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित कर दिया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। भजनकार कहता है कि जिस तरह सूर्य और चंद्रमा आकाश में ईश्वर के साक्षी बने रहते हैं, उसी प्रकार यीशु ख्रीस्त द्वारा प्रसारित ईश राज्य सदा सर्वदा के लिए कायम रहेगा, उसका कभी भी अंत नहीं होगा। आगे 89वें भजन के 39वें पद से लेकर 44 तक के पदों में एक प्रकार से भजनकार ईश राज्य की स्थापना में आने वाली बाधाओं की ओर ध्यान आकर्षित कराकर कहता है, फिर भी तूने अपने अभिषिक्त को त्यागा, उसे अपमानित होने दिया और उस पर अपना क्रोध प्रकट किया, तूने अपने सेवक के प्रति अपनी प्रतिज्ञा को भंग किया, तूने उसका मुकुट धूल में दूषित होने दिया, तूने उसकी चार दीवारी गिरा दी और उसके गढ़ खंडहर बना दिए, उधर से गुजरने वाले उसे लूटते हैं, उसके पड़ोसी उसे ताना मारते हैं, तूने उसके शत्रुओं का बाहुबल बढ़ा दिया, तूने उसके विरोधियों को आनंद प्रदान किया, तूने उसकी तलवार की धार भोतरी कर दी, तूने उसे संग्राम में नहीं संभाला। श्रोताओ, इस स्थल पर यह ध्यान में रखना हितकर होगा कि 89वें भजन के 38 तक के पदों में प्रभु ईश्वर में अटल विश्वास की अभिव्यक्ति कर उनकी दया और उनकी सत्य प्रतिज्ञता का भजनकार बखान करता है, किंतु भजन के 39वें पद में उसकी भावनाएं बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं। 39वें पद के बाद से भजन के अंत तक भजनकार शिकायतों का सिलसिला जारी रखता है। बाइबल आचार्यों का मानना है कि स्तोत्र ग्रंथ के 89वें भजन के रचयिता ने ये पद उस समय लिखे होंगे जब दाऊद के घराने पर घोर संकट छाया था। वह दुख इतना गहरा था कि ईश्वर की संहिता का पालन करने तथा ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता में दृढ़ विश्वास के बावजूद इस भजन का रचयिता रो पड़ता है और शिकायत करने लग जाता है। संभवतः भजनकार ने यह पुकार हताशा के उस क्षण में लगाई होगी जब अबसालोम के षड्यंत्र के कारण दाऊद के वंश को उत्पीड़ित किया जा रहा था। प्राचीन व्यवस्थान में निहित सामुएल के दूसरे ग्रंथ में हमें दाऊद के पलायन का विवरण मिलता है। इस ग्रंथ के 15वें अध्याय के 13वें और 14वें पदों में हम पढ़ते हैं, एक दूत दाऊद को यह सूचना देने आया कि इसराइलियों ने अब सालोम का पक्ष लिया है। इस पर दाऊद ने यरूशलेम में रहने वाले अपने सब सेवकों से कहा, चलो हम भाग चलें, नहीं तो हम अब सालोम के हाथ से नहीं बच पाएंगे, हम शीघ्र ही चले जाएं, कहीं ऐसा न हो कि वह अचानक आकर हमारा सर्वनाश कर डाले और शहर के निवासियों को तलवार के घाट उतार दे। इसी प्रकार 89वां भजन राजा सुलेमान के आध्यात्मिक पतन के काल में अथवा सुलेमान की मृत्यु के बाद राज्य के पतन के बाद रचा गया होगा, जिसका विवरण हमें राजाओं के पहले ग्रंथ के 11वें और 12वें अध्यायों में मिलता है। श्रोताओ, जिस समय जिस क्षण अथवा जिस परिस्थिति में भी 89वें भजन की रचना की गई हो, इतना तो स्पष्ट है कि इस भजन में आने वाले मसीह की भविष्यवाणी निहित है। ईश्वर द्वारा भेजे गए मसीह यानी कि प्रभु यीशु ख्रीस्त को भी इन्हीं सब दुखों का सामना करना पड़ा था। उन्हीं ख्रीस्त को जिन्होंने दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाए गए, दफनाए गए और मृतकों में से तीसरे दिन पुनः जी उठकर हम सबके लिए अनंत जीवन के द्वार खोल दिए।
तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे प्रभु, तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा।
तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे प्रभु, तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा।
तू ही करुणा मेरे प्रभु, मुझे करुणा से भर दे प्रभु, तेरी करुणा मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा।
तू ही करुणा मेरे प्रभु, मुझे करुणा से भर दे प्रभु,
शांति है मेरे प्रभु, मुझे शांति से भर दे प्रभु, तेरी शांति मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा।
तू ही शांति है मेरे प्रभु, मुझे शांति से भर दे प्रभु, तेरी शांति मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा।
तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे प्रभु,